नमस्कार, मैं हूं नदीम। विशुद्ध राजनीति में आज बात दलित पॉलिटिक्स की आइकॉन कही जाने वाली मायावती की। 90 के दशक में एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी मायावती बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में इन दिनों बहुत अकेले दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में बहुत सारे हैशटैग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत उससे कतई जुदा है। ऐसा क्यों है, आज मैं आपको यही बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक किस्सा उन दिनों का, जब पार्टी काशीराम के नियंत्रण में हुआ करती थी और मायावती उनकी छत्र छाया में पार्टी का स्वीकार चेहरा बनने की कोशिश में आगे बढ़ रही थी। उसी दरमियान पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने मायावती के नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी थी। काशीराम को लखनऊ में एक रैली करना पड़ा था पार्टी जन को ये संदेश देने के लिए कि अगर मायावती का पार्टी पर नियंत्रण बढ़ रहा है तो उसमें उनकी सहमति है। रैली में जो दिलचस्प बात उन्होंने कही थी और जो उस वक्त पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का सबब बनी थी वो ये थी कि जब तक कुत्ते मायावती का पांव चाटते हैं तब तक मायावती को अच्छा लगता है, लेकिन जब उनमें से कोई उन्हें काटने को दौड़ता है तो वो भागकर मेरे पास आती हैं। इसका भावार्थ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ गए होंगे कि काशीराम क्या कहना चाह रहे थे। मैं आपको मायावती की जिद और ताकत का वो किस्सा भी बताऊंगा कि कैसे वो अपनी पार्टी के कैबिनेट मंत्री का सामान सरकारी बंगले से रातों रात सड़क पर फेंकवाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को मजबूर कर देती हैं। लेकिन पहले बात ताज़ा संदर्भ में, मायावती इस वक्त इसलिए चर्चा में है कि जब यूपी के चुनाव के बस 8 महीने बचे हैं तो उन्होंने अपनी पार्टी के 2 सबसे वरिष्ठतम नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इनमें से एक लालजी वर्मा हैं जो विधानसभा के अंदर पार्टी विधानमंडल दल के नेता थे और दूसरे राम अचल राजभर हैं जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों के प्रभारी भी रहे हैं। राम अचल राजभर का नाम आया तो मुझे उनकी पृष्ठभूमि याद आ गई। वो अम्बेडकर नगर ज़िले के रहने वाले हैं और एक वक्त वहाँ की साप्ताहिक बाज़ार में चूहे मार दवा बेचने का काम किया करते थे। चूहा मार दवा बेचने के लिए भीड़ बटोरने की उनकी जो कला थी वो काशीराम ने कभी देख ली थी। काशीराम को वो कला बहुत पसंद आई। काशीराम उस वक्त वंचित समाज के लोगों को बहुजन मूवमेंट से जोड़ने के काम में लगे हुए थे। उन्होंने राजभर को बसपा जोड़ने का न्योता दिया और राम अचल राजभर बसपा में आ गए। 1951 में पहली बार उनको विधायकी का टिकट मिला लेकिन वो हार गए। 1993 में काशीराम ने उन्हें फिर आजमाया, राम अचल राजभर चुनाव जीत गए और वहीं से उनकी राजनीति की गाड़ी चल पड़ी। वो मायावती सरकार में लगातार मंत्री बनते रहे। इन 2 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद राजनीतिक गलियारों में ये सवाल उछला कि क्या मायावती की पार्टी में कोई बचेगा भी या नहीं, क्योंकि इन 2 विधायकों को बाहर किए जाने के बाद यूपी विधानसभा के अंदर बहुजन समाज पार्टी के विधायकों की संख्या महज 7 रह गई है। ये संख्या बीएसपी की अब तक की न्यूनतम संख्या है। 1989 में बीएसपी ने जब पहली बार विधानसभा चुनाव में दस्तक दी थी तब भी उसके 13 विधायक जीते थे। उस वक्त एक अनजान सी पार्टी की इतनी धमाकेदार जीत ने यूपी की सियासत में हलचल मचा दी थी। उसके बाद मायावती राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री हुई और 2007 के चुनाव में सबसे ज़्यादा 206 सीट जीतने में वो कामयाब रही थी। 2017 के चुनाव में अगर उनके 7 विधायक ही जीते होते तो भी ये सवाल नहीं उछलता कि मायावती की पार्टी में कोई बचेगा या नहीं बचेगा, लेकिन सवाल उछलने की वजह यह है कि उनकी 2017 के चुनाव में उनके 19 विधायक जीते थे जिनमें से अब 7 रह गए हैं। जो 19 विधायक जीते थे उनमें से 1 सांसद हो गए हैं और जब खाली हुई सीट पर उपचुनाव हुआ तो बीएसपी अपनी वो सीट नहीं बचा पाई, लेकिन 11 विधायकों को अलग अलग मौके पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में मायावती ने या तो निलंबित कर दिया या पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। राजनीति में पार्टी विरोधी गतिविधि में लिप्त होने का जो मोटे तौर पर मायने निकाला जाता है वो ये होता है कि संबंधित व्यक्ति कोई दूसरी पार्टी के साथ अपने रिश्ते को जोड़ना चाह रहा है। अब यहीं से समझने वाली बात है, कोई भी विधायक या सांसद उस वक्त तक पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त नहीं होता है जब तक उसे अपनी मौजूदा पार्टी से जीत की गुंजाइश दिख रही होती है। जब उसे लगता है कि अगला चुनाव जीतने की गुंजाइश कम हो गई है, तभी वो किसी नई पार्टी में जगह बनाने की जुगत में लगता है। यहीं से हवा का रुख पहचानने का जरिया बन जाता है। अगर बीएसपी के 19 में से 11 विधायक पार्टी विरोधी गतिविधि में लिप्त पाए गए हैं तो सियासी हवा का रुख आप खुद महसूस कर सकते हैं। बात सिर्फ यूपी की नहीं है, राजस्थान में भी बीएसपी के 6 विधायक जीते थे लेकिन सभी के सभी पार्टी छोड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी बीएसपी के 2 विधायक जीते थे, वो भी अब पार्टी के साथ नहीं रह गए हैं। मायावती के अकेले पड़ने की बात क्यों कही जा रही है, इसे भी जरा समझिए। मायावती राष्ट्रीय राजनीति में अगर सबसे ताकतवर चेहरा बनकर उभरी तो उसकी वजह यूपी है। यूपी में ही उनका सबसे बड़ा जनाधार देखने को मिला है, लेकिन 2012 के चुनाव से वो लगातार ढलान पर हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में उनकी सदस्य संख्या 206 से घटकर 80 पर आ गई, और उसके बाद 2014 में लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो उनका एक भी सांसद जीत नहीं पाता है। फिर 2017 के विधानसभा चुनाव होते हैं और 2017 के विधानसभा चुनाव में उनके विधायक सिर्फ 19 रह जाते हैं और वो राज्य में तीसरे नंबर की पार्टी बन जाती हैं। अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए ही 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने का फैसला किया था। उस गठबंधन से उनको फायदा भी हुआ, पार्टी के 10 सांसद जीत गए, लेकिन नतीजे के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने अपना गठबंधन खत्म कर दिया। ये उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक चूक मानी जाती है, लेकिन ये उनकी राजनीतिक मजबूरी भी थी। उन्हें मालूम था कि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए गठबंधन जारी रखने का कोई औचित्य नहीं समझा और गठबंधन को खत्म कर दिया। लेकिन उनके इस निर्णय को उनकी पार्टी के अंदर भी सहजता के साथ स्वीकार नहीं किया गया। इस निर्णय के बाद ही 8 विधायकों को उन्हें निलंबित करना पड़ा, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव के मौके पर उन विधायकों ने समाजवादी पार्टी के साथ अपना रابطہ कायम कर लिया था। समाजवादी पार्टी का बयान आ चुका है कि कुछ भी हो जाए अब बीएसपी से गठबंधन की बात हम सोच भी नहीं सकते। बीजेपी के लिए भी मायावती अब कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। मायावती यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री हुई, उसमें से पहले 3 बार बीजेपी के सहयोग से ही हुई हैं। 2007 के चुनाव में एक बार उन्हें स्पष्ट बहुमत मिला था। बीजेपी इसलिए मायावती को मुख्यमंत्री स्वीकार करने के लिए राजी हो जाया करती थी कि एक तो वो उस काल में यूपी के राजनीति में हाशिए पर थी, और दूसरे उसे लगता था कि मायावती को मुख्यमंत्री बनाने से दलितों के बीच उसकी स्वीकारता बढ़ेगी। लेकिन बीजेपी अब खुद ताकतवर हो चुकी है। 2017 के चुनाव में उसे 300 से ज़्यादा सीटें मिली और दलित समाज में बगैर मायावती के सहयोग से उसकी पैठ भी हो गई है। अब वो यूपी में मायावती को दोबारा ताकतवर नहीं देखना चाहती है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी अब मायावती के बजाय भीम आर्मी के चंद्रशेखर के साथ गठबंधन की ख्वाहिश में है। मायावती का जो बिहार में छोटे दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने का फार्मूला था, वो भी फ्लॉप हो चुका है। सवाल ये है कि मायावती के लिए नौबत किस क्यों आई, इसकी वजह भी हम आपको बताते हैं। पहली वजह तो ये है कि 3 दशक के दरमियान लगभग सभी पार्टियां नए नेतृत्व के हाथों में आईं, लेकिन मायावती ने कभी इस तरफ सोचा भी नहीं, और तब भी नहीं जब पूरे देश में युवा वोटर निर्णायक बन चुका है। बहुत पहले उन्होंने एक बार कहा था कि अभी तो हम स्वस्थ हैं, जब कभी उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी की जरूरत होगी तो वो उनकी ही जात का होगा और उनसे उम्र में 18-20 साल छोटा होगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने पत्ते कभी नहीं खोले। दूसरी वजह, मायावती ने कभी पार्टी के अंदर दूसरी लाइन की लीडरशिप को पनपने का मौका ही नहीं दिया। उन्हें हमेशा ये डर सताता रहा कि पार्टी के अंदर कहीं उनका कोई विकल्प ना खड़ा हो जाए। पहले उन्होंने काशीराम के मूवमेंट से जुड़े नेताओं को एक एक कर बाहर का रास्ता दिखाया, तब ये कहा गया था कि शायद वो अपने नेतृत्व में विश्वास रखने वाले नेताओं को तरजीह देना चाहती हैं, लेकिन वैसा भी नहीं हुआ। वो जिन नेताओं को पार्टी में लेकर आईं उनमें भी ज़्यादातर पार्टी से बाहर हो चुके हैं। कोई भी पार्टी या नेता भरोसे के साथ ही नहीं कह सकता है कि मायावती के जरिए मिला हुआ वचन कितने वक्त तक कायम रहेगा। तीसरी बात, मायावती जिस समीकरण के सहारे राज्य में अपनी पैठ बनाए हुए थी 2014 के बाद वो बिखर गया है। यूपी में बीजेपी के कमज़ोर होने पर अपर कास्ट और उसमें भी खासतौर पर ब्राह्मण वोट का जो बड़ा हिस्सा था वो मायावती के समर्थन में होता था, लेकिन जैसे ही बीजेपी मजबूत हुई वो अपनी मूल पार्टी यानी बीजेपी में वापस लौट गया। मोस्ट बैकवर्ड वोट भी बीएसपी की ताकत हुआ करता था। एक वक्त जब मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के नेता सबसे ज़्यादा बीएसपी में देखने को मिलते थे, लेकिन एक एक करके उनमें से ज़्यादातर बीएसपी से बाहर हो चुके हैं और मोस्ट बैकवर्ड वोट का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ जा चुका है। बीजेपी से तीन बार मिलकर सरकार बनाने की वजह से मुस्लिम वोट भी कभी मायावती पर सहज विश्वास नहीं करता है। अगर ये मान भी लिया जाए कि मायावती दलित वोटों को अपने पक्ष में गोलबंद कर लेंगी तो अकेले दलित वोटों से सरकार नहीं बनती है। यही तमाम वो वजह हैं जब मायावती के लिए अपनी सारी सियासी रणनीति पर नए सिरे से सोचने की ज़रूरत आन पड़ी है। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं मायावती की जिद और ताकत का एक किस्सा आपको बताऊँगा। ये 1994 की बात है। यूपी में SP-BSP की गठबंधन सरकार चल रही थी। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। मायावती उस सरकार में शामिल नहीं थी, लेकिन उनकी पार्टी के विधायक मंत्री थे। मायावती सुपरवाइजर की भूमिका में थी। उन्होंने अपने कोटे से सरकार में शामिल शिक्षा मंत्री डॉक्टर मसूद अहमद को बर्खास्त करवा दिया। मसूद अहमद बागी हो गए। मायावती को ये बात नागवार गुजरी। उन्होंने मुलायम सिंह यादव को फ़ोन कर पूछा कि जब उन्होंने उस मंत्री को बर्खास्त करवा दिया है तो वो मंत्री सरकारी बंगले में कैसे रह रहा है, उसका सामान अभी आप बाहर कराइए। मुलायम सिंह यादव को ऐसा करना पड़ गया था। रातों रात डॉक्टर मसूद अहमद का सामान सरकारी बंगले से निकालकर सड़क पर फेंक दिया गया। कई मौकों पर मुलायम सिंह यादव ने सार्वजनिक रूप से स्वीकारा था कि ये उनकी राजनीतिक मजबूरी थी। विशुद्ध राजनीति में आज इतना ही। नमस्कार।
सिर्फ यही है देश और दुनिया की हर जरूरी नॉलेज, दिलचस्प जानकारियां और सार्थक मनोरंजन। सुने या पढ़ें और रहें दूसरों से दो कदम आगे हर रोज। गोल्ड के पॉडकास्ट का खजाना मिलेगा नवभारत गोल्ड.com पर।